हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। एक बड़ा सा शिप इंडियन ओशन के रास्ते इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। शिप के अंदर सिक्योरिटी काफी टाइट थी। इस वक्त उस शिप पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। ड्रोन की फुटेज एक बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही थी। वो स्क्रीन स्पेशल एजेंट्स के ऑफिस में लगी थी। सब पिछले 30 घंटे से बिना आराम किए उसे मॉनिटर कर रहे थे। अचानक उस कमरे में एक आदमी तेज कदमों से चलते हुए अंदर आया। वो उनका हेड कबीर अग्निहोत्री था। उम्र 40 साल के आसपास, लंबा चौड़ा, एक फिट एजेंट। अंदर आते ही कबीर ने अपनी सख्त रौबदार आवाज में कहा, हैट्स ऑफ टू यू एजेंट्स, आपके जज्बे और डेडिकेशन को मेरा सलाम, जो बिना आराम किए आप इस शिप को मॉनिटर कर रहे हैं। ये शिप हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें विस्फोटक सामग्री इंडिया लाई जा रही है। इस माल तक पहुंचकर हम कई टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोक सकते हैं और साथ ही अंडरवर्ल्ड के किंग तक पहुंचने के भी रास्ते खुल जाएंगे। कबीर के हौसला अफजाई करने पर सबके चेहरे पर प्राउड स्माइल आ गई। इससे पहले कि कबीर आगे कुछ बोलता, वो शिप हवा में गोते खाने लगा। उसके ठीक ऊपर अचानक एक चॉपर आ गया। हर कोई खड़ा होकर हैरानी से उसे देखने लगा। वहीं उससे अलग चॉपर में एक लगभग 25 साल का लड़का पायलट के पास बैठा था। लगभग 5 फीट 11 इंच हाइट, हल्का गेरुआ रंग, देखने में फिट एंड हैंडसम, आंखों पर गॉगल्स, उसने ग्रे सूट पहना था। ऑर्डर दो ध्रुव, क्या करना है, उसने पूछा। वो वीर था, मीरा का बेटा। सामने से एक सख्त और शांत सी आवाज आई, डिस्ट्रॉय इट वीर। इसी के साथ कॉल कट होने की आवाज आई। कोई कुछ समझ पाता कि तभी एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और पूरा शिप देखते देखते तबाह हो गया। शिप खत्म होते ही सभी एजेंट्स एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। वहीं कबीर के चेहरे पर इस वक्त गुस्से के गहरे भाव थे। कबीर ने मुठ्ठियां कसते हुए कहा, ये जरूर उसका काम है। अगले 15 मिनट में मुझे मीटिंग रूम में मिलो। विल हैव टू डू समथिंग, अदरवाइज एक दिन वो सब बर्बाद कर देगा। इतना कहकर कबीर उस कमरे से मीटिंग रूम में जाने लगा। कबीर जानता था ये कौन कर सकता है। इस वक्त सिर्फ स्पेशल सीक्रेट एजेंसी में ही नहीं, बल्कि 3 अलग अलग जगह पर एक खास मीटिंग चल रही थी। तीनों फील्ड अलग अलग थे, लेकिन मीटिंग का कारण एक ही था, एक ऐसा शख्स जिसने उन तीनों जगहों पर तहलका मचा रखा था। उनमें से एक मीटिंग सीक्रेट एजेंसी ऑफिस में, दूसरी अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों में, तो तीसरी बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों में हो रही थी। सीक्रेट एजेंसी मीटिंग रूम। कुछ ही देर में कबीर मीटिंग रूम में लगी स्क्रीन के पास खड़ा था और उसके सामने 6 ऑफिसर बैठे थे। उसके पास की स्क्रीन पर एक फोटो थी, पर उसका कोई चेहरा नहीं था। कबीर ने प्रोजेक्टर पर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मुझे इस शख्स का चेहरा और नाम पता करना है। इसके बारे में बस इतना पता है, ये माफिया किंग का बेटा है। अगर वो उसका बेटा है तो फॉर श्योर अगला किंग भी यही होगा। सभी एजेंट्स गौर से उसकी बातें सुन रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो इस तरह की मीटिंग पहली बार कर रहे थे। पहले भी माफिया किंग के बेटे को पकड़ने के लिए वो लोग कई रास्ते अपना चुके थे, पर उसे पकड़ना तो दूर, उन्हें तो माफिया किंग के नाम तक के बारे में नहीं पता था। कबीर आगे बताते हुए बोला, हमारे पास इसके लेकर कोई हिंट नहीं है, क्योंकि ये अपना काम इतनी सफाई से करता है कि कोई सबूत नहीं छोड़ता। मुझे किसी भी कीमत पर इसका नाम पता करना है और इसे पकड़ना भी है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि ये माफिया किंग डेविल का बेटा है। अब डेविल कौन है, इसके बारे में भी नहीं पता। कोई इसे बेबी डेविल कहता है तो कोई गुड माफिया। जब कुछ पता ही नहीं है तो फिर मीटिंग रखने का क्या फायदा है? ये तो अंधेरे कुएं में सुई ढूंढने जैसा है। पहले आप नाम पता कीजिए, फिर हम इस खतरनाक मिशन को लेने के लिए तैयार हैं, वहां बैठे एक ऑफिसर ने कहा। दूसरे ऑफिसर ने भी उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, पहले भी उसके बारे में पता लगाने के लिए कई ऑफिसर्स को भेजा गया था। जिसको भी भेजा गया, उसकी लाश तक पहचान में नहीं आई। आसानी से कोई इस केस को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता सर, आपको भी मना कर देना चाहिए था। कबीर ने उनकी बातों को पूरी तरह इग्नोर किया। उसने एक नज़र स्क्रीन की तरफ देखा और अपने मन में कहा, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। मुझे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल टास्क मिला है और कबीर अग्निहोत्री ने हारना नहीं सीखा है। कबीर ने उन सबकी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, अब इस केस को पूरी तरह मैं हैंडल करने वाला हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि कैसे हैंडल करना है। जो भी इस मिशन से जुड़ना चाहता है वो हर खतरे के लिए तैयार रहे। इतना कहकर कबीर ने मीटिंग को वहीं पर खत्म कर दिया था। कबीर को किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो बिना अपनी जान की परवाह किए इस मिशन के लिए अंडरवर्ल्ड में कदम रख सके। दूसरी मीटिंग अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों के बीच हो रही थी। ये वे लोग थे जिन्हें बेबी डेविल उर्फ गुड माफिया के कामों से दिक्कत थी। उनमें कुछ छोटे बड़े माफिया तो कुछ तपोरी लोग थे। सीक्रेट एजेंसी ऑफिस और वहां की मीटिंग में फर्क सिर्फ इतना था कि उनके पास कोई चेहरा या नाम नहीं था, लेकिन इनके पास चेहरा भी था और नाम भी। उनमें से एक बोला, जब से ये आया है पूरा धंधा ही चौपट कर दिया है। कितने अच्छे तरीके से इधर उधर ड्रग्स पहुंचाते थे, चीजों को स्मगल करते थे, पर इसने सब तहस नहस कर दिया। अरे काहे के रोल, जब हमारा धंधा ही इलीगल है। चाइल्ड और विमेन ट्रैफिकिंग पर तो जैसे इसने लगाम ही लगा दी है। भाई आपका कहना गलत है, अभी तो ठीक से आया भी नहीं, फिर भी ये हालत कर रखी है। जिस दिन माफिया किंग बन गया उस दिन तो ये हमारा नामो निशान मिटा देगा। मैं तो कहता हूँ कि इसको माफिया किंग बनने से पहले ही मार डालते हैं, वहां खड़े एक और आदमी ने कहा। उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है जो इसे खत्म कर दें। मैं तो कहता हूँ किसी लड़की को उसके पास भेजते हैं, प्यार व्यापार के जाल में फंसाएगी और फिर उसे मार देगी, वहां खड़े दूसरे आदमी ने कहा। वे लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी एक आदमी बोला, वो उनका खबरी था। साहब मैं एक लड़की को जानता हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, मैं तो कहता हूँ उसी को ही भेजते हैं, वो दो मिनट में उसे अपने जाल में फंसा लेंगी और देखना इतने शातिर तरीके से अपना काम करेगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। सबको उसका आइडिया पसंद आ गया था, लेकिन एक समझदार माफिया जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता था वो उन सब पर चिल्लाकर बोला, पागल हो गए हो तुम लोग, किसी छोटे मोटे गुंडे से डील करने के लिए नहीं जा रहे हो, वो अगला माफिया किंग बनने वाला है, लोगों का जीना हराम कर रखा है, तो हल्के में कैसे ले सकते हो तुम उसको, कोई अच्छा प्लान बनाओ ना, कि ये थर्ड क्लास प्लान, लड़की को भेजकर प्यार के जाल में फंसा लेंगे, ये पहले के जमाने में होता था, अब नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। भले ही उस आदमी को लड़की को भेजने का प्लान पसंद ना आया हो, लेकिन बाकी लोगों को ये अच्छा लगा था और वे इस पर काम करना चाहते थे। कबीर अग्निहोत्री की तरह उन्हें भी किसी शख्स की तलाश थी जो उसके पास जाकर उसे प्यार के जाल में फंसा सके। वहीं तीसरी मीटिंग इंडिया के बजाय न्यूयॉर्क में चल रही थी। वहां बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग थे और उनमें एक शख्स सम्राट मल्होत्रा और उसका बेटा दक्ष मल्होत्रा भी था। सम्राट मल्होत्रा जो बिजनेस की दुनिया की वो शार्क मछली था जो हर छोटे बिजनेस को बर्बाद कर देता था, उसे बिजनेस माफिया के नाम से भी जानते थे।
सबकी उम्मीद सम्राट मल्होत्रा से थी क्योंकि वही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। सम्राट ने खड़े होकर सख्त आवाज में कहा, उसने पहले ही मेरे आधे बिजनेस को बर्बाद कर दिया था, बचा हुआ आधा बिजनेस लेकर मैं मुंबई छोड़कर न्यूयॉर्क आ गया, सोचा कि यहाँ तो वो मेरा पीछा छोड़ देगा। उसके पीठ पीछे माफिया से एक शख्स मेरी हेल्प कर रहा था, पर जब से उसके बेटे ने माफिया की दुनिया में कदम रखा है उसकी तो क्या किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उसके खिलाफ जाकर कुछ कर सके। उसका बेटा दक्ष मल्होत्रा जो उम्र में 30 साल के आसपास था वो सारी बातें गौर से सुन रहा था। सम्राट मल्होत्रा का बिजनेस आजकल वही संभाल रहा था, उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूछ की और आंखों में अपने बाप की तरह एटीट्यूड। पूरी बात सुनने के बाद दक्ष ने हाथ में पेपरवेट घुमाते हुए कहा, सबसे बड़ी गलती आपने मुंबई छोड़कर की, दुश्मन के सामने रहकर मुकाबला करने का मजा ही कुछ और है, फिर से मुंबई चलते हैं और देखते हैं कि इस बार आपका डेविल क्या कर पाता है। इस बार उसका मुकाबला सम्राट मल्होत्रा से नहीं दक्ष मल्होत्रा से होगा, उसे अपनी माफिया किंग की पोजीशन भी छोड़नी पड़ेगी और खुद आगे आकर बिजनेस माफिया को सपोर्ट भी करना होगा। डेविल यानी माफिया किंग युग राणा जो माफिया किंग की पोजीशन पर पिछले 26 सालों से था, किसी की इतनी औकात नहीं थी कि युग राणा की नाक के नीचे से उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम कर सके। सम्राट मल्होत्रा और युग राणा की दुश्मनी काफी पुरानी और गहरी थी। सम्राट का काम था बिजनेस माफिया के तौर पर छोटी इंडस्ट्रीज को बर्बाद करके उन्हें अपने अंदर मर्ज करना। फर्क इतना था कि अब उसने इंडिया पूरी तरह छोड़ दिया था, या यूं कहें युग की वजह से उसे छोड़ना पड़ा था। दक्ष की बात सुनकर उनमें से वहां बैठे किसी दूसरे बिजनेसमैन ने कहा, डेविल से मुकाबला करना तो वैसे ही मुश्किल था, अब अगर सम्राट मल्होत्रा का बेटा सब संभाल रहा है तो युग राणा की शील्ड उसका बेटा ध्रुव राणा, जानते हो क्या तुम उसके बारे में? युग राणा की तरफ नजरें भी डालोगे तो वो तुम्हारी आंखें निकालकर फेंक देगा, और यकीन करो कि ऐसा करने से पहले वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगा। उस आदमी की बात को दक्ष ने चैलेंज की तरह लिया। उसने सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, अब तो डाल दी मैंने युग राणा पर नजरें, देखते हैं ध्रुव राणा मुझे कैसे रोकता है। उसी ध्रुव राणा की आंखों के सामने उसके बाप युग राणा को मारूंगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहकर दक्ष वहां से उठकर चला गया। सम्राट का बेटा दक्ष उससे पूरी तरह अलग था, अगर उसने कुछ ठाना था तो वो ये किसी भी हाल करके दिखाने वाला था। उसका पहला निशाना युग था जिसे वो मुंबई जाते ही सबसे पहले खत्म करने वाला था।